नए केस पर काम करने के लिए देव वैदेही के घर पर आ चुका था। कल रात के हादसे के बाद उन दोनों के मन में यशवर्धन सिंह पर संदेह हो गया था। मुझे कल रात उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा, देव ने बताया। तुम कल रात की बात कर रहे हो? मुझे तो जब से वो मिला है अजीब ही लगा। यू नो व्हाट, वो पार्टी में मेरे पास आया और मुझे अपनी प्राइवेट मीटिंग में इन्वाइट कर रहा था। सोचो, ऐसी प्राइवेट मीटिंग जिसके अंदर किसी भी रिपोर्टर का आना अलाउ नहीं था। वैदेही की बातों ने देव को और भी हैरानी में डाल दिया था। तो क्या वो अपनी पार्टी के सीक्रेट्स लीक करना चाहता है? कुछ कह नहीं सकते, वैदेही ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। कल रात उसने मुझे पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलने दिया और पूरे रास्ते गाड़ी में एक ही रट लगा रखी थी कि ये सब उसने मेरी भलाई के लिए किया। बोल तो ऐसे रहा था जैसे वो हमला उस पर नहीं मुझ पर हुआ था। हाँ, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स के हिसाब से तो यही है। जहाँ हम दोनों जंगल में जा रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन यशवर्धन सिंह वहाँ पर हीरो बनकर आया और हम दोनों को बचा लिया, देव ने मुंह बनाकर कहा। वो उसी न्यूज़ की बात कर रहा था जिसे सुबह वैदेही ने भी देखा था और वो गुस्सा हो गई थी। उनके बारे में तो बात ही मत करो, मेरा भी दिमाग घूमा हुआ है। अपनी बात को रखते तो ऐसे हैं जैसे दुनिया में इनसे सच्चा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो दया आती है उन लोगों पर जो ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, बिना सच को जाने बस अपनी मनगढ़ंत कहानियां अपने हिसाब से रखते रहते हैं। वैदेही गुस्से में उस न्यूज़ चैनल को कोस रही थी। तो अब आगे क्या करना है? उसी प्रोजेक्ट पर लगे रहें या अपने नए मिशन मिशन यशवर्धन पर लगे? देव ने पूछा। वैदेही ने कुछ देर सोचकर जवाब में कहा, देव, इस केस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी बहुत ढील बढ़ती जा चुकी है, लेकिन यशवर्धन सिंह, उसकी बात करूँ तो वो भी जितना सीधा और शांत बनता है उतना है नहीं। उसके बारे में पता लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। हाँ, कुछ दिनों में इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ जाएंगे और मुझे लगता है हर बार की तरह इस बार भी महाराष्ट्र विकास पार्टी की ही जीत होने वाली है। ऐसे में यशवर्धन के सीएम बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मैं यशवर्धन को देखती हूँ और तुम उस केस पर स्टडी करो। जब सबूत साथ हो जाएंगे तो दोनों एक साथ धावा बोल देंगे, वैदेही ने देव को इंस्ट्रक्शंस दिए। काम डिसाइड होने के बाद दोनों अपने अपने काम पर लग गए। जहां देव लड़कियों के गायब होने के बारे में छानबीन कर रहा था, तो वहीं वैदेही यशवर्धन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। शाम के 6 बज रहे थे। यशवर्धन सिंह अपने निजी आवास में मौजूद था और अपने घर के बगीचे में टहल रहा था। वो टहलते हुए वैदेही के बारे में सोच रहा था। हम अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त आप हमारे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होंगी। जल्दबाजी में हमारा डिसीजन ही कुछ ऐसा था, लेकिन अगर हम उन गुंडों को नहीं मारते तो कभी न कभी वो छूट ही जाते और अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए आपकी जान लेने से भी नहीं चूकते। जाने वो दिन कब आएगा जब आप हम पर विश्वास करेंगी। कहीं तब तक देर ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। यशवर्धन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके पास उसका सेक्रेटरी अनंत देसाई आया। वो उसके दाहिने हाथ की तरह था, जिसे उसके बारे में हर एक खबर मालूम होती थी। साथ ही उम्र में उससे बड़े होने की वजह से वो उसका मार्गदर्शक भी थे। किसके ख्यालों में खोए हुए हैं सर? अनंत जी ने उसके पास आकर कहा। किसी के नहीं, यशवर्धन सिंह ने बात को टाल दिया। उसने बात का रुख मोड़ते हुए अनंत जी से पूछा, इसे छोड़िए, मैंने आपको जो काम दिया था वो हो गया था क्या? ऐसा कभी हुआ है कि आपका दिया हुआ काम समय पर पूरा न हुआ हो? आपका संदेह बिल्कुल सही था, आप पर राघवेंद्र ने ही हमला करवाया था, अनंत ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अच्छे से जानता था कि ये घटिया हरकत उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। उसे क्या लगता है, अगर पिताजी की तरह मुझे भी कुछ हो गया तो वो आसानी से सीएम की कुर्सी हासिल कर लेगा? उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले, लेकिन हम श्योर हैं कि उसी ने पिताजी को मरवाया होगा, यशवर्धन ने गुस्से में कहा। अनंत ने उसको शांत करते हुए बोला, आप टेंशन मत लीजिए सर, एक बार आपको सीएम की कुर्सी मिल जाए उसके बाद राघवेंद्र को उसके हर गुनाह की सजा मिलेगी। ऐसा तो तभी होगा ना जब मैं सीएम बन पाऊंगा। वो किसी भी कीमत पर ये कुर्सी मेरे लिए नहीं छोड़ेगा। अगर हम दोनों के बीच मतदान करवाया भी गया तो ज्यादातर उसे ही सपोर्ट करेंगे। अगर कोई उसे सपोर्ट नहीं भी करेगा तो वो अच्छे से जानता है कि उनके समर्थन के लिए उसे क्या करना है। बस यही तो फर्क है आप में और उनमें। वो हर काम को मार से करना जानते हैं तो आप प्यार से। इस बार भी प्यार का तरीका आजमा कर देखिए, क्या पता चीजें काम कर जाएं? अनंत ने भौहें उठाकर गंभीर आवाज में कहा, मानो वो किसी और बात के बारे में बात कर रहा हो। उसकी बात सुनकर यशवर्धन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी, मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ रहा हूँ देसाई जी, लेकिन अभी इसके लिए जल्दबाजी होगी। कई बार जल्दबाजी करनी पड़ती है सर, वरना हाथाई बाजी किसी दूसरे के हाथ में चली जाती है। अब इजाजत दीजिए, त्यागी जी को भी सब कुछ बताना है, ये कहकर अनंत जी ने हाथ जोड़े। यशवर्धन ने भी उनकी बात पर पलकें झुकाकर हामी भरी और उन्हें जाने की अनुमति दी। देसाई जी वहां से जा चुके थे, जबकि यशवर्धन अभी भी वैदेही के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ वैदेही के फ्लैट पर देव और वैदेही को साथ काम करते करते रात के 8 बज चुके थे। नरगिस भी अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पर लौट आई थी। उन दोनों को साथ काम करते देख नरगिस ने चुटकी बजाते हुए कहा, दोनों ने पूरे दिन में कुछ खाया पिया है या पूरे दिन से ऐसे ही समाज सुखार करने में लगे हो? हाँ, बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया था, देव ने बिना उसकी तरफ देखकर जवाब दिया और अकेले अकेले दोनों ने ठूस भी लिया। नरगिस ने मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम तो डाइट कर रही थी ना। वैदेही ने नरगिस की तरफ देखकर कहा तो वो गुस्से में उसे घूर रही थी। अच्छा बाबा, वी आर जस्ट किडिंग, सुबह से तुम्हारे बनाए सैंडविचेस और जूस पर गुजारा कर रहे हैं। हाँ, तुम आरजियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, नरगिस ने कहा और अंदर चली गई। उसके जाते ही वैदेही ने देव से पूछा, अच्छा तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची? कुछ खास पता नहीं चल पा रहा, बस पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है। मैंने किसी से उस जगह का डेटा मंगवाया है लेकिन उसमें भी कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर इनकी फैमिली से बात करनी होगी। अगर ये लड़कियाँ अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हैं तो कभी न कभी किसी फैमिली मेंबर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की ही होगी। देव ने अपनी अब तक की रिपोर्ट को वैदेही के सामने रख दिया था। मेरी रिपोर्ट की बात करूं तो यशवर्धन सिंह जी का कैरेक्टर उतना ही क्लीन है जितना कि उसका व्हाइट कुर्ता होता है। उसके अगेंस्ट आज तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। पार्टी में उसकी इमेज भी अच्छी है। पब्लिक इमेज की बात करूं तो अक्सर डोनेशन वगैरह भी देता रहता है। उसने उन गुंडों को क्यों मारा होगा, या तो यशवर्धन खुद ही बता सकता है, बट एट द सेम टाइम वो हमें क्यों बताएगा? बताना होता तो वो अब तक मुझे बता चुका होता। क्यों ना हम उससे मिलकर बात करें, देव ने सुझाव दिया। तब भी वो हमें कुछ नहीं बताएगा। सच कहूँ तो मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती। तो क्या हम यशवर्धन के मिशन को छोड़कर उस केस पर ध्यान दें? केस वाकई सीरियस है। देव की बात सुनकर वैदेही सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब में कहा, हाँ मैं भी तुम्हारी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन यशवर्धन इतना ही अच्छा होता तो उस पर हमला क्यों होता? कहीं कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है।
और उस कुछ का पता लगाने के लिए हमें यशवर्धन से मिलना ही होगा, लेकिन क्या हमें अपॉइंटमेंट मिल पाएगी, देव ने पूछा। नरगिस उनके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। उसने देव की बात सुन ली थी। वो एक्साइटेड होकर उनके पास आई और खुशी से उछल पड़ी। क्या सच में तुम लोग यशवर्धन सिंह से मिलने की बात कर रहे हो? अगर तुम लोग इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हो तो प्लीज मुझे भी साथ लेकर जाना। उसकी बात सुनकर देव और वैदेही ने अपना माथा पीट लिया। नरगिस, हम यहाँ कुछ सीरियस बात कर रहे हैं, तुम अपनी प्यार मोहब्बत बाद में दिखा लेना, देव ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। क्या हो जाएगा अगर तुम लोग उससे मिलने जाओगे तो मुझे भी ले जाओगे? उस दिन पार्टी में भी उससे मिलने का मौका नहीं मिला, प्लीज। नरगिस मासूम सा चेहरा बनाकर उसके सामने रिक्वेस्ट कर रही थी। अब ये तो वैदेही मैम पर ही डिपेंड करता है कि वो यशवर्धन सिंह से मिलने के लिए जाएंगी या नहीं, इसलिए तुम मुझे नहीं वैदेही को मनाओ। देव ने नरगिस का ध्यान वैदेही की तरफ कर दिया। उसके ऐसा करने पर वैदेही ने उसे घूर कर देखा। इससे कैसी रिक्वेस्ट करनी? ठीक है वैदेही, हम चल रहे हैं। मैं अपने लिए ऑनलाइन किसी साइट पर अच्छी ड्रेस देख लेती हूँ, और तुम तो रिपोर्टर बनकर जाओगी तो वही अपना टिपिकल सा ऑफिस सूट पहन लेना, नरगिस ने कहा और अंदर चली गई। इसका कुछ नहीं हो सकता, तो आपने क्या सोचा मैम, कि आप उनसे मिलेंगी, देव ने पूछा। वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, यशवर्धन सिंह से कल या परसों की अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करो। बोलते हुए वैदेही को याद आया कि यशवर्धन सिंह ने उसे उसके पर्सनल नंबर दिए थे। खैर छोड़ो, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी, तुम कल शाम यशवर्धन सिंह से मिलने की तैयारी करो, वैदेही ने कहा। देव को उसकी अचानक बात बदलने का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि वैदेही ने हाँ कही है तो वो कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेगी। उसने बिना सवाल किए उसकी बात पर हामी भरी और कल मिलने का बोलकर वहां से चला गया।